ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की उत्तर बिहार संचालिका वरिष्ठ राजयोगिनी परमादरणीय रानी दीदी उपस्थित हैं और साथ ही एक धर्म संसद जिसमें विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि एकत्र हैं और उनसे उनके धर्म के साथ ही साथ उनकी सामाजिकता और उनके व्यक्तिगत उहापोह से भरे हुए प्रश्न जिसका उत्तर आदरणीय दीदी देंगी। हमारा देश भारत नाम से ही आध्यात्मिक देश है। भारत नहीं यह स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है, किसी एक देश का नहीं शील यह भूमंडल भर का है। आध्यात्मिक साधना करता हुआ यह देश निरंतर संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना करता है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा आर्ष भाव रहा है और हम लगातार इसी चिंतन पर कार्य करते रहे हैं। विश्व भर का हो भला, विश्व भर को प्राप्त हो नवज्ञान नित नूतन कला। दीदी, आज ये धर्मावलंबी ये भी कहीं न कहीं दुखी होते हैं, उदास होते हैं और धर्म के नाम पर निरंतर पनपते हुए पाखंडवाद को देखते हुए जो धर्म को इन्होंने धारण किया है, धर्म को जिस तरह से अपने आचरण में उतारा है, स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं क्षोभ और संताप इन्हें भी सताता है। हम आज आपसे धर्म के संदर्भ में और साथ ही साथ धर्म के बदलते हुए परिवेश और उसकी बदलती हुई परिभाषा और मान्यता, ऐसे में आदमी धर्म और अध्यात्म के बीच में किस तरह से संतुलित अपने को करता हुआ अपनी आत्मा, अपने मन, अपने समाज और संपूर्ण विश्व का किस तरह से भला करे।
आज हमें बहुत खुशी है कि यहां आप सभी इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमें ऐसा महसूस होता है कि ये संसार जिसमें अनेक अनेक धर्म, अनेक विचारधाराएं, ये संसार को एक सही मार्ग की ओर ले जाने वाली है। हर एक धर्म पिता ने समाज को बहुत अच्छा मार्ग दिखाया है। किसी ने क्षमा भाव जगाया है, किसी ने शक्ति भाव जगाया है, किसी ने अहिंसा भाव जगाया है, किसी ने पर उपकार का भाव जगाया है, सेवा भाव जगाया है। सब धर्म के जो धर्म नेता हुए, धर्म संस्थापक हुए, उन्होंने समाज को सुखमय बनाने के लिए, आपस में मिलजुल कर रहने के लिए बहुत प्रेममय रास्ते दिखाए हैं। और आज सभी अपने अपने धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा, बहुत भावना रखते हैं। तरीके अलग हैं, भाषा अलग है, पोशाक अलग है, रीत रसम अलग है। इसको हम यूं कह सकते हैं, ये विभिन्नता इस संसार की शोभा है। वैरायटी, अलग अलग रीत रसम, अलग अलग पोशाक, अलग अलग भाषा, अलग अलग, ये भिन्नता नहीं, ये सुंदरता है, ये इसकी शोभा है। असली भाव है हम सब एक के हैं। इस सृष्टि का क्रिएटर एक है। सबने उन्हें ईश्वर कहा, प्रभु कहा, गॉड फादर कहा, अल्लाह कहा, एक एक प्रभु को पुकारा है, एक की ओर सबने ध्यान खिंचवाया है, वो एक है। अगर हम सब ये समझ लें कि हम सब उस एक के हैं तो आपस में एकता हो जाएगी। सबका प्रयास रहा है सर्व धर्म मिलकर एक हो जाएं। क्यों रहा है? क्योंकि सभी समाज के उत्थान का कार्य कर रहे हैं, तो आओ मिलकर करें। ये भावना जगाई जाती है, ये श्रेष्ठ भावना है, ये परोपकार की भावना है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ कराना, गरीबी मिटाना, व्यसन मुक्त करना, उनके अंदर प्रभु प्रेम जगाना, ईश्वर के प्रति आस्था जगाना और अपने परिवार में समाज में सुखमय जीवन बिताने की कला सिखाना, यही धर्म का लक्ष्य है। धर्म शब्द कहता है, धर्म अर्थात जो धारण करने योग्य है। धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं है, धर्म तो धारणा है। जैसे जल का धर्म शीतलता है, वायु का धर्म बहना है, अग्नि का धर्म गर्म है, ये उसका ओरिजिनल रूप, किसी भी वस्तु का ओरिजिनल स्वभाव धर्म कहलाता है। इसी प्रकार से हम सभी मिलकर समाज को एक ऐसी शक्ति दें, एक ऐसी पावर दें, जिससे वो अपने आत्मा के असली स्वधर्म को जानकर, अपने असली स्वरूप को जानकर और इस सृष्टि के क्रिएटर एक परमात्मा से प्रेम कर ले, तब हम समझते हैं कि समाज को हम सब मिलकर बहुत श्रेष्ठ रास्ते की ओर ले जा सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन कर सकते, क्योंकि आप सब उस सेवा भाव में, उस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, समाज कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। इसलिए इस कर्तव्य की तो जितनी सराहना करें उतनी कम है।
अनेकता में एकता ही सौंदर्य है और इस देश का निरंतर विकास विभिन्न धर्मावलंबियों के मानवोचित और जन कल्याणकारी कार्य से ही हो रहा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन आज ठीक इसके विपरीत आचरण हो रहा है। जैसे जैसे हम पुण्य की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, इसके विपरीत नकारात्मक चरित्र विकसित होता चला जा रहा है। हम ऐसे में गायत्री के शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री मंत्र को साधते हुए उसकी व्यापकता को उपलब्ध कराने वाले परम आचार्य श्री राम शर्मा के गायत्री कुल से ही आते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद शर्मा जी। और हम जानना चाहते हैं, अपने धर्म को साधते हुए एक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, हम जानना चाहते हैं उनकी जिज्ञासा और पूछना चाहेंगे उनका प्रश्न। डॉक्टर सच्चिदानंद शर्मा जी,
धर्मावलंबियों के द्वारा कुछ न कुछ आयोजन निरंतर होते रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर में उनके जो विकार हैं वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, विकार उन्मुक्त नहीं हो पा रहे। साधना पद्धति उनकी है, लेकिन विकारोन्मुक्त न होने के कारण उनके अंदर में ईगो विकसित हो जाता है। उसे कैसे दूर किया जाए? दूसरी बात, हम सबके सब तो मनुष्य हैं, सब एक ही परम परमेश्वर के पुत्र हैं, तो कोई ना कोई व्यवहारिक स्वरूप होना चाहिए धर्म का हमारा। तो हम सबों का व्यवहारिक धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए?
अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए भी जो हमारा वास्तविक आत्मा का धर्म है, अपने आत्मा के धर्म के स्वरूप में स्थित हो जाएं। और आत्मा का धर्म, आत्मा की इच्छा यही है कि हमें शांति मिले, हम सबको सुख दें, हम आपस में प्रेम से रहें। अगर हम शांति रूपी धर्म में स्थित हो जाएं, हम पीसफुल रहने के अभ्यासी हो जाएं, हम किसी भी क्षेत्र में काम करेंगे, हमारे कर्म से हमें भी शांति मिलेगी, औरों को भी शांति मिलेगी, हम भी सम्मान में रहेंगे, औरों को भी सम्मानित करेंगे, हम भी अपने कर्तव्य को पहचान कर आचरण करेंगे। हमारा कर्तव्य है सबको सुख देना, सहयोग देना। और आज जो मनुष्य के अंदर में अहंकार का बोलबाला हो जाता है, अहंकार आने से वो सेवा नहीं कर सकता। जो सेवाधारी है, जिसे समाज की सेवा करनी है, उसमें सबसे पहला गुण है निरअहंकारी, उसके अंदर अहम मिट जाता है। अगर अहम मिटा दें और यही समझें कि मैं सेवाधारी हूं, मुझे सबको स्नेह देना है, सत्कार देना है, सहयोग देना है, यही लक्ष्य लेकर के चलें और कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आए मुझे पीसफुल रहना है, क्योंकि हम शांति दूत हैं, हम शांति का संदेश लेकर समाज में आए हैं, हमारे अंदर शांति की शक्ति है, उस शक्ति को ग्रहण करके हमें अपने हर कर्म में उस शांति की शक्ति को दिखाना है। यही तो धर्म सिखाता है। परिस्थितियां तो आएंगी, जो हम नहीं चाहते वो बातें आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम अपने स्वधर्म, स्वधर्म माना आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म सबका एक है, क्योंकि जन्म लिया तो किसी ने क्रिश्चियन धर्म में जन्म, परिवार में जन्म लिया तो क्रिश्चियन हुआ, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ तो मुस्लिम हुआ, सिख धर्म में पैदा हुआ तो सिख हुआ, जो जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म, हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो हिंदू हुआ। ये हुए हमारे शारीरिक धर्म, लेकिन हमारी आत्मा का धर्म एक है। हम सब आत्मा हैं जो इस शरीर को चला रही है, और आत्मा का धर्म क्या है? शांति। जैसे कुछ भी हो जाए लोग अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपने धर्म के लिए मर मिटते हैं, क्या हम ऐसा इस शांति के धर्म में स्थित हो सकते हैं? कुछ भी हो जाए हम अपनी शांति भंग नहीं करेंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसी स्थिति हमारी बन जाए और हम एकदम निरअहंकारी हो जाए, नम्रता की विशेषता आ जाए और सबको सम्मानित करें, सबका सम्मान करें, यही धर्म सिखाता है। अगर ऐसा आचरण हो तो हम समाज के सच्चे सेवक हो सकते हैं, सच्चे सहयोगी हो सकते हैं।
आत्मा का प्राकृतिक गुण है शांति, आनंद और कल्याण। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, साथ ही साथ भारत में अनेक पंथ हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना, कबीरा लड़ी लड़ी दो मुए, मरम ने एको जाना। फिर नानक साहब ने कहा, अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। बावजूद इसके हम अपने अपने धर्माचरण के पंथ पर चलते हुए भी कभी कभी हम दुर्बलताओं के शिकार हो जाते हैं। हमारे बीच श्री राम, जय जय राम का अलख जगाने वाले रामाश्रयी शाखा के सनातन धर्मावलंबी केदार प्रसाद जी हैं, और उनसे उनकी जिज्ञासा हम जानना चाहेंगे, उनका प्रश्न, उनका द्वंद, उनकी दुविधा।
भारत की यह पावन भूमि जहां सभी धर्मों के लोग समान रूप से अपने जीवन यापन करते हुए, अपने अपने धर्मों में निष्ठा रखते हुए भारत की गरिमा को बनाए रखने में समर्पित है, इसके बाद भी कुछ कारण ऐसा है कि सभी धर्मों के लोग किसी कारणवश अपनी मानसिकता को सामंजस्य के आधार पर, धर्म के आधार पर, भारतीयता के, राष्ट्रीयता के आधार पर एक नहीं कर पाते। यह एक विडंबना है। मानव को एकाग्र होने के लिए, मन स्थिति को कंसंट्रेट करने के लिए जो आवश्यकता होती है, हम आदरणीय रानी बहन जी से चाहेंगे कि वे विस्तार से इस बात को बताएं कि सभी धर्मावलंबी मानव को, जो अपने अपने धर्म में रहते हुए भी, धर्म को जानते हुए भी, कहीं न कहीं राष्ट्र धर्म से, सेवा धर्म से, सत्य धर्म से वंचित कर रखे हैं, उनका मूल कारण क्या है और कंसंट्रेशन में उनको कमी होती है, कैसे उन्हें यह कंसंट्रेशन प्राप्त हो, इसके लिए हम रानी दीदी से मार्गदर्शन चाहेंगे।
सभी धर्म की अपने अपने तरीके हैं कार्य करने के, लेकिन राष्ट्र एक है और एक राष्ट्र में सभी का, भारत ने हर धर्म का स्वागत किया है, हर धर्म को सम्मान दिया है, और हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम अपने आप को पहचानें, शरीर के रूप से अलग अलग धर्म हैं, लेकिन जब हम इस शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो देख रही है, जो चेतन शक्ति है जिसे आत्मा कहते हैं, जब हम अपने आप को ये महसूस करते हैं कि शरीर के अंदर एक चैतन्य स्वरूप मैं आत्मा हूं, तो सभी आत्माएं हैं, एक ही घर से यहां आए हैं, एक ही परम पिता परमात्मा की संतान है, और यहां आकर इस ड्रामा की स्टेज पर भिन्न भिन्न पार्ट अदा कर रहे हैं। हम सभी को अलग अलग पार्ट मिला है, वो पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। लक्ष्य एक है कि हम सबको मिलकर चलना है, हम सबको मिलकर रहना है, हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, एक दूसरे का सम्मान करना है, हमारा किसी से झगड़ा ना हो, किसी से वैर विरोध ना हो, किसी से ईर्ष्या द्वेष ना हो, एक प्रेम का संदेश लेकर, एक शांति का संदेश लेकर हम सब मिलकर कोई कार्य करें और आत्म अनुभूति करें। अगर आत्म अनुभूति करते हैं तो एकता आती है, देह अभिमान में आते हैं तो अनेकता दिखाई देती है। तो हमें आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, धर्म के साथ साथ हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति आए। आध्यात्मिक रूप में हम सब आत्माएं हैं, हम सब का लक्ष्य भी एक है, लेकिन उसको करते हुए हमारे अंदर प्रेम भाव बढ़ता रहे, कल्याण भाव बढ़ता रहे, और आपस में कभी भी द्वेष ना हो, झगड़ा ना हो। अगर संसार को सुखमय संसार बनाने वाले, संसार को श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाले, चरित्र का निर्माण करने वाले, समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाने वाले अगर आपस में लड़ पड़े तो समाज का क्या हाल होगा? हम सब तो मार्गदर्शक हैं, सबको मार्ग दिखाने वाले हैं, और कैसा दिखाना है? वाणी से नहीं, चरित्र से दिखाना है। जो कह रहे हैं वो करके दिखाना है। आज हर व्यक्ति चाहता है, प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, हर चीज का प्रैक्टिकल स्वरूप चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं, अगर ये भाव हमारे अंदर है तो सबके अंदर आपसी प्रेम की भावना जागृत होगी और समाज को उसका कल्याण होगा।
सब सुख शांति चाहते हैं, एक ही ईश्वर की इबादत करते हैं। हम अपने बीच उपस्थित इस धर्म संसद में, जबकि हम विभिन्न धर्मावलंबियों से उनकी जिज्ञासा, उनकी उत्सुकता जानते हुए उनके द्वंद्व और वैयक्तिक जो विचार हैं इससे भी रूबरू हो रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं हिंदू धर्मावलंबी, लेकिन संगीत साधना में लगा हुआ एक युवक, संगीत के माध्यम से भी कहीं न कहीं आत्मा को राहत पहुंचाने की शक्ति अर्जित कर लेता है और साथ ही साथ अपने धर्म का आचरण भी करता है। तो संगीत भी एक धर्म है, संगीत भी एक आध्यात्मिक बोध है, और इस बोध के साथ अपने हिंदू धर्मावलंबी होने का कितना व्यापक लाभ समाज को दे पाते हैं और किस स्तर पर जाकर सोचते हैं, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राकेश मिश्र से।
ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज इस धर्म संसद के माध्यम से आदरणीय दीदी से जानना चाहता हूं कि मानव धर्म तो एक ही है, चाहे वह हिंदू हो तो पंथ है, हिंदू सिख ईसाई सभी पंथ है, धर्म तो मानव का एक ही है। यह धर्म पंथ का रूप कब ले लिया और पंथ धर्म में कब परिणित हो गया और अध्यात्म के साथ इसका क्या समन्वय है?
पंथ के प्रपंच से मुक्त होकर कब सही अर्थ में, पूर्ण अर्थ में मानव धर्म होगा? जबकि महाभारत जो कि एक युद्ध कथा है और उसका भी प्रारंभ मनुर्भव से होता है, तो हम कब संपूर्ण मनुष्य बनेंगे और मानव धर्म का निर्वाह करेंगे? यही राकेश जी का प्रश्न।
आपका कहना ठीक है कि आत्मा का के रूप से धर्म एक है, लेकिन विभिन्न धर्म कब कैसे बने? जैसे ईसा मसीह ने ऐसे धर्म को जीव व्यवहार में लाने के लिए जो रास्ता दिखाया उसे ईसाई धर्म कहा गया, मोहम्मद साहब ने जो रास्ता दिखाया उसे मुस्लिम धर्म कहा गया, महात्मा बुद्ध ने जो समाज को पाठ पढ़ाया उसे बुद्ध धर्म कहा गया। लेकिन सबने पाठ पढ़ाया क्या? किसी ने क्षमा, किसी ने अहिंसा, किसी ने सम्मान में स्थित होने का, समाज के कल्याण का सबने मार्ग दिखाया, लेकिन विभिन्न नाम इसी प्रकार हुए और कुछ रस्म रिवाज विभिन्न हुई। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें एक आध्यात्मिक रूप अगर समझ लें, अध्यात्म माना आत्मा के नाते हम सब एक हैं। आज किसी को भी आत्मिक अनुभूति नहीं होती है, सारे दिन में हजारों बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं और मेरा दो शब्द का प्रयोग हजारों बार करते हैं। मैं कौन? मेरा ये शरीर है, एक मोटर के समान है और मैं इसको चलाने वाला हूं। मैं आंख नहीं हूं, आंख से देखने वाला हूं, कान नहीं हूं, कान से सुनने वाला हूं, इस मुख से बोलने वाला हूं। जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है वो दिखाई नहीं देता। अभी हम बोल रहे हैं, ये शरीर तो दिखता है, आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम जो बोल रहे हैं आत्मा ही बोल रही है, सुन रहे हैं आत्मा ही सुन रही है। वो आत्मा जो अति सूक्ष्म है और सबकी आत्मा का रूप एक जैसा है, संस्कारों में भिन्नता है। आत्मा संस्कार लेकर आई है और संस्कारों के अनुसार यहां कर्म करती है। तो हमें आध्यात्मिक पाठ पढ़ने के लिए आत्मा का केवल ज्ञान नहीं चाहिए, आत्मा की अनुभूति चाहिए। आत्मा का अनुभव करने के कारण आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा शरीर ग्रहण करती है और इस कर्म क्षेत्र में अपने कर्मों का फल भोगती है। तो हमें वो आत्मा का ज्ञान चाहिए और उस सुप्रीम सोल का ज्ञान चाहिए जो प्रकाश पुंज है, जो ज्योति स्वरूप है। सबने माना है ईश्वर एक प्रकाश है। चर्च में भी हम देखते हैं कैंडल जलाते हैं, मक्का में हज करने जाते हैं, वहां जो आकार है वो भी एक ऐसा ही आकार है जिसे पवित्र मानते हैं। और उन्होंने भी साक्षात्कार किया तो लाइट ही लाइट देखा। इसका मतलब है वो ईश्वर, वो सृष्टि का क्रिएटर, वो ज्योतिर्मय है। हमारी भारतीय परंपरा है किसी भी देवी देवता का पूजन हो, बिना ज्योत जगाए, बिना दीप जगाए पूजा संपन्न नहीं होती। हर जगह ज्योति का महत्व है, हर जगह प्रकाश का महत्व है। हमें ये समझ लेना है कि सृष्टि का जो क्रिएटर है वो ज्योति स्वरूप है, वो निराकार है, उसको मानव आकार नहीं है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, वो प्रकाश पुंज है, वो ज्योति स्वरूप है। उन्हीं को परम पिता परमात्मा ईश्वर अल्लाह गॉड फादर उनको ही कहा गया है। तो ये बात अगर हम जान लेते हैं तो आपस में एक पिता की संतान है तो आपस में प्रेम होगा, क्योंकि हमारा हम सब एक परिवार के हैं। ये सारा विश्व एक परिवार है, इसका वो क्रिएटर है। हम सब एक परिवार के हैं, चाहे किसी भी विचारधारा को मानने वाले हों, लेकिन एक परिवार की तरह हमारा आपस में प्रेम बढ़े और प्रेम भाव से हम समाज का कल्याण का कार्य करें, यही हमारा लक्ष्य है।
सही अर्थ में जो भी धर्म प्रवर्तक हुए, ईसा मसीह को जिसने शूली दी, ईसा ने उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना की कि इन्हें बोध नहीं है, हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना। भगवान बुद्ध ने अपने शांत चित्त और अपने करुणामय व्यक्तित्व से ही अंगुलीमाल जैसे दस्यु को शांत कर दिया और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक ब्रह्मा बाबा ने भी अपने विराट प्रेम भाव से, अपनी दिव्य दृष्टि से और एक युग प्रवर्तक की भूमिका में ही नहीं रहकर बल्कि एक युग दृष्टा की भूमिका में, एक युग निर्माता की भूमिका में जिस तरह से उन्होंने शांति सेना का गठन किया और भाई बहनों, ऐसे भाई बहनों को सुगठित और आत्मा का साक्षात्कार कराने का काम उन्होंने कराया, बोध कराया, जिनको देखते हुए ही हमारे भीतर एक पवित्र भाव, एक दिव्य भाव, एक सुख, एक शांति और एक दिव्यानंद की अनुभूति सहज ही होती है। हम मार्गदर्शन कार्यक्रम में फिर वरिष्ठ राजयोगिनी रानी दीदी से अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। और आज इस धर्म संसद में आए हुए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो भी धार्मिक भाई बंधु हमारे आए हैं उनका हम बहुत स्वागत करते हैं और सही अर्थ में हम अपने धर्म को किस तरह से धारण करते हुए व्यापक स्तर पर मानवीय धर्म का निर्वाह करें और सद्वृत्तियों को जागृत करें इन्हीं शब्दों के साथ दीदी के प्रति बहुत आभार और आप सबके लिए ओम शांति।